कृष्णा, आज हम गीता महात्म में जो कि पद्म पुराण से है, इससे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को सुनने के महात्म के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक बार पार्वती जी शिव जी को बोलती हैं पद्म पुराण में कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे दिव्य सत्यों के बारे में जानने का मौका मिला और मैंने सुना भगवान श्री कृष्ण की महिमा। अब मैं सुनना चाहती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से बोली थी, उसको सुनने से क्या लाभ होता है, क्योंकि उसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हमारी बढ़ती है। तो शिव जी ने बोला, मैं उन व्यक्ति पे ध्यान करता हूं जिनका रंग जो है वो बादल की तरह है और जो गरुड़ पे आरूढ़ रहते हैं, जो अनंत शेष पे निवास करते हैं और उनकी महिमा अनंत है, मैं उन्हीं की पूजा करता हूं। मैं, मेरी प्रिय पार्वती, एक बार भगवान विष्णु ने मुरा नाम के दैत्य को मार दिया था और वो अनंत शेष पे शयन कर रहे थे और उस समय माता लक्ष्मी ने उनसे बड़े आदर भाव से पूछा, भगवान आप इस जगत के नियंता हैं और भर्ता हैं, लेकिन आप इस जगत में इस समय इस कार शीर सागर में, दूध के सागर में आप कुछ असंतुष्ट लग रहे हैं सोते समय, कारण क्या है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए लक्ष्मी जी, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से मेरी जो शक्तियाँ हैं वो अद्भुत रूप से कार्य करती हैं। इन अद्भुत शक्तियों के द्वारा ही मैं इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखता हूँ और फिर भी इनसे अलग रहता हूँ, इस ब्रह्मांड से अलग रहता हूँ। लेकिन इन दिव्य शक्ति, इन कार्यों को, इन मेरे दिव्य कार्य हैं, भगवान विष्णु के जो दिव्य कार्य हैं, इनका स्मरण करके ही जो भक्त हैं और योगी जन हैं वो अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा लेते हैं और मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं जो कि शाश्वत है और निर्गुण है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप तो भगवान, आप तो सभी के नियंता हैं, ध्यान के उद्देश्य आप ही हैं, इस जगत में कुछ भी आपके बिना नहीं चल सकता और आपसे कुछ भी अलग नहीं है, आप ही इस जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण हैं, जितने भी अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, मुझे बताइए किस प्रकार से आपकी अद्भुत शक्तियां कार्य कर रही हैं और क्यों वो इतनी आकर्षक हैं कि आप भी यहां पर लेटे हुए उन पर ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी जी, मेरी जो अनंत कोटि शक्तियां हैं उनको, उनकी कार्यशीलता को जानना और इस जगत के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना और मेरे शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करना, ये उसी व्यक्ति को समझ में आ सकता है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो और जिसकी सेवा की वृत्ति हो मेरे प्रति, और इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से समझा जा सकता है भगवद गीता के माध्यम से। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान जब आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हैं अपनी शक्तियों को, की कार्यशीलता को देखकर, और आप भी उनकी लिमिट्स को, यानी कि आप उनकी जहाँ पे जो उनकी मतलब क्षमता है आगे तक उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे भगवद गीता आपकी सभी शक्तियों को का निरूपण कर सकती है और कैसे समझा सकती है कि इन शक्तियों से पार पाकर व्यक्ति भगवान के दिव्य धाम, आपके दिव्य धाम को प्राप्त करेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैंने स्वयं ही भगवद गीता के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। जो पहले के 5 अध्याय हैं वो मेरे 5 मुख हैं, आगे के 10 अध्याय मेरे 10 हाथ हैं, 16वां अध्याय मेरा पेट है और आखिरी के 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। इस प्रकार भगवद गीता को हमें एक दिव्य मूर्ति के रूप में समझना चाहिए। ये भगवद गीता हर प्रकार के पाप का नाश करने वाली है और जो बुद्धिमान व्यक्ति एक अध्याय को पढ़ता है या एक श्लोक को पढ़ता है, आधे श्लोक को पढ़ता है या फिर 1/4 श्लोक को भी पढ़ता है, उसको वही गति प्राप्त होगी जो सुशर्मा को प्राप्त हुई। तो लक्ष्मी जी ने पूछा सुशर्मा कौन थे, सुशर्मा कौन था, उसकी क्या जाति थी, वो कौन से वर्ण में था और उसको क्या गति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी, सुशर्मा बहुत ही खराब व्यक्ति था, बहुत ही पापी था, बावजूद उसके कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, उसके परिवार को कोई वैदिक ज्ञान ना था और उसको आनंद आता था दूसरों को दुख देने में। उसने कभी भी मेरा गुणगान नहीं किया, मेरे नाम का उच्चारण नहीं किया, कोई दान नहीं किया और कभी अतिथियों का स्वागत नहीं किया। वस्तुतः उसने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, वो अपना जीविका चलाता था सूखी पत्तियों को बेच करके, और उसको शराब पीने में और मांस खाने में बहुत आनंद आता था, सुख मिलता था, और इस प्रकार उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। एक दिन सुशर्मा एक साधु के बाग में गया और वहां वो पत्तियां इकट्ठा कर रहा था, लेकिन भाग्यवश काल के प्रभाव से एक सांप ने उसको डस लिया और वो मर गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे अनेक अनेक नरकों में जाना पड़ा, जहां उसने बहुत समय तक दुख भोगा। उसके बाद उसको एक बैल का शरीर प्राप्त हुआ और वो बैल एक लंगड़े ने खरीद लिया और उसे अपनी सेवा में लगाया। 7-8 साल तक उसने बहुत भारी भारी वजन उठाया। एक दिन उस लंगड़े व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सामान उसके पीठ के ऊपर लाद दिया और उसको मार मार करके फोर्स कर रहा था, पुश कर रहा था कि वो बहुत जल्दी जल्दी चले, लेकिन एकदम से वो जो बैल था वो गिर पड़ा बेहोश होकर के। तो उसके सब तरफ लोग इकट्ठे हो गए और उस बैल की हालत को देख करके बहुत दुखी हुए। तो एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने कुछ पुण्य इस बैल को देता हूँ। इसको देख करके जो अन्य पुण्यात्मा लोग थे उन्होंने भी अपना स्मरण किया, कुछ पुण्य किया हो, और उस पुण्य को वो उस व्यक्ति को देने, उस बैल को देने लगे। इस प्रकार से उस भीड़ में एक वैश्या भी थी और उसे याद नहीं था कि कोई उसने पुण्य कार्य किया हो, लेकिन जब देखा उसने कि अन्य लोग उसको पुण्य दे रहे हैं तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी अपना पुण्य इसको देती हूँ जो उसने शायद कभी किया हो। मृत्यु जो बैल की मृत्यु हो जाती है और वो यमलोक जाता है, यमलोक उसको यमराज जी उसको बोलते हैं यमलोक में, अब तुम अपने सारे पूर्वगत पापों से मुक्त हो और जो वैश्या ने तुमको पुण्य दिए थे इस कारण से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद वो एक बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और उस जन्म में उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है। काफी समय के बाद वो इस वैश्या का को खोज लेता है जिसके कारण उसको नारकीय यातना से मुक्ति मिल गई थी, और वो अपने आप वहाँ उसके पास जाता है और अपने आप को अपना परिचय देता है और वो पूछता है, ऐसा आपने कौन सा पुण्य किया था जिसके फल के प्रभाव से मैं नरक में जाने से बच गया। तो वो वैश्या कहती है, हे प्रभु, हे ब्राह्मणवर, मेरे पास एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है जो जो कुछ बोलता रहता है, रोज उसको सुनने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है और उस श्रवण के प्रभाव को, जो श्रवण का पुण्य था वो मैंने आपको दिया था। तो दोनों फिर बड़े लोग दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए और दोनों जाकर के उस तोते के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। तो उस तोते को भी अपना पूर्व जन्म याद था और उसने अपना इतिहास बताना चालू किया कि पिछले जन्म में मैं बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अपने अहंकार के कारण मुझे दूसरों की निरादर करना बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत ही ईर्ष्यालु था। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे बहुत सारे नरकों में जाना पड़ा, जहां मैंने बहुत समय तक दुख भोगा और उसके बाद इस समय मैं इस शरीर में तोते का शरीर प्राप्त किया। मेरे पहले किए गए पापों के कारण मेरे माता पिता, यानी कि तोते के शरीर वाले माता पिता मर गए और मैं जब छोटा था तो गर्म बालू के में पड़ा हुआ था और मेरा कोई सहारा नहीं था। कुछ ऋषियों ने मुझे देखा और कृपा करके अपने आश्रम में लेके आए और मुझे एक पिंजरे में डाल दिया। वहां पे कुछ बच्चे लोग उन ऋषियों से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के उच्चारण को सीख रहे थे। उस अध्याय को सुन करके मैंने भी उन श्लोकों को बोलना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद एक चोर ने मुझे उस आश्रम से चुरा लिया और इस पुण्यात्मा महिला की जो वैश्या है इसको बेच दिया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, भगवत गीता के प्रथम अध्याय को बार बार बोलने से वो जो तोता था वो पूरी तरह शुद्ध हो गया था और उसको सुनने से जो वैश्या थी वो शुद्ध हो गई थी और उस श्रवण के कुछ फल को सुनने से सुशर्मा भी शुद्ध हो गया था। इस प्रकार से प्रथम अध्याय के महिमा को सुन करके और चर्चा करके सुशर्मा अपने घर पर वापस आ जाता है और तीनों लोग व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को नियमित रूप से उसका पाठ करने लगते हैं और वो बहुत जल्दी वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। जो कोई व्यक्ति इस प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अध्ययन करता है वो बहुत आसानी से इस जगत के दुखों से पार पा जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रथम अध्याय की महिमा का वर्णन सुना। हरे कृष्णा।